श्री साई राम साई प्रेम वाणी के हमारे आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में हम आप सबके लिए लाएंगे भगवान की सुमधुर वाणी में दिव्य संदेश, जिसमें स्वामी ने हमें विभिन्न प्रकार की विद्याओं और शिक्षाओं से अवगत कराया है, एवं साई का प्यार जीवन आधार, जिसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के दो वरिष्ठ विद्यार्थियों श्री अनिंद्या जी दासगुप्ता एवं कपिल जावा जी के मध्य हुए वार्तालाप का आनंद लेंगे।
हम आदर्श जीवन आनंद उपवन के अंतर्गत दो भेड़ियों की एक प्रेरक कथा और गान सरिता प्रोग्राम के तहत एक सुमधुर गीत का श्रवण लाभ भी लेंगे। इसके साथ साथ हम भजन शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत एक गुरु भजन सीखेंगे तथा प्रेमावतार श्री सत्यसाई प्रोग्राम में भगवान बाबा के बाल्यकाल से जुड़ी कुछ हृदय को छू लेने वाली कथाएं भी सुनेंगे। तो आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।
अब प्रस्तुत है प्रेमावतार श्री सत्य साई प्रोग्राम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक से लिए गए कुछ अलौकिक प्रसंग, जिसमें भगवान बाबा के बालपन की लीलाओं का वर्णन है।
आज हम जानेंगे कि बचपन से ही स्वामी का हृदय अन्य प्राणियों के लिए द्रवित हो जाता था। कैसे स्वामी ने अपने नन्हे मुन्ने सखाओं के साथ मिलकर एक नाट्य भजन मंडली प्रारंभ की आदि।
कुंडम राजू का परिवार संयुक्त होने के कारण सत्या का बाल्यकाल वृंदावन के नंद गोपाल के समान 18-20 बालक बालिकाओं के बीच व्यतीत हुआ। वे सब बालक जानते थे कि सत्या से मिठाई पेपरमिंट आदि प्राप्त करने के लिए असत्यता चोरी लोभ या छल कपट का सर्वथा त्याग करना आवश्यक है। बाल्यावस्था से ही सत्या को हिंसा से घृणा थी। मुर्गे मुर्गियों की लड़ाई आदि हिंसक खेलों को देखने अन्य बालकों के समान वह नहीं जाया करता था। सुअर की हत्या के समय उसकी आर्त चीत्कार सुन सत्या का हृदय करुणा से द्रवित हो उठता। महाएकादशी के दिन पुट्टपर्दी के किसान चित्रावती नदी के तीर पर रेत में अपनी बैलगाड़ियां ले जाते और बैलगाड़ियों की दौड़ की प्रतियोगिता में जीतने के लिए वे बैलों को निर्दयता पूर्वक पीटते और उनकी पूंछ मरोड़ते हुए भगाते थे। इस हिंसापूर्ण तमाशे को देख अन्य लोगों के समान तालियां बजाकर उनकी सराहना करना सत्या को प्रिय नहीं था। बाबा साक्षात करुणा मूर्ति हैं। 10 वर्ष पूर्व की बात है, मुझे अब भी भलीभांति स्मरण है। कर्नाट नागपल्ली में उपस्थित मोटर गाड़ियों में मद्रास की ओर प्रयाण करने के लिए कुछ भक्तगण प्रशांति निलयम से रात्रि के समय लगभग 10 बजे बैलगाड़ियों में बैठे। बाबा ने अटारी से ही आशीर्वाद दे उन्हें विदा किया। बैलगाड़ियों ने मुख्य द्वार पार किया, पर कुछ याद आते ही बाबा ने उन भक्तों को वापस बुलाया। बाबा की आज्ञा सुनने के लिए आतुरतापूर्वक वे सब भक्त दौड़े आए। कुछ नहीं, चित्रावती तट पर रेत आते ही तुम सब बैलगाड़ी से उतरकर पैदल ही चलना, बेचारे बैल इतना भार सहन कर गाड़ियां नहीं ढो पाएंगे, उन्हें कष्ट होगा। यही थी उस करुणा मूर्ति की आज्ञा। छोटी उम्र से ही सत्या को चलचित्र से अरुचि थी। कोत्तचेरुवू या बुक्कापट्टनम में जब टूरिंग टॉकीज अपना डेरा डालती तब आसपास के लोगों का रात भर जागरण होता। ईश्वरार्पित अलग रखा धन भी लोग उन चित्रों पर व्यय कर देते। पेदवेंकप्पा राजू भी अपने बच्चों को लेकर उन चित्रों को देखने जाया करते थे, किंतु उनके कथनानुसार सत्या को ले जाने के लिए लोगों को बहुत प्रयास करना पड़ता था। चित्र देखने से पहले ही उसकी टीका आरंभ हो जाती है। संगीत और साहित्य का रूप बिगाड़ते हैं, पति पत्नी अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, देवताओं के स्वरूप को गलत रूप में प्रकट करते हैं, खून चोरी डकैती के दृश्य भरे रहते हैं। तब मैं यह कहकर चला जाता कि इस प्रकार दृश्य रहे चित्त देखते हो तो तुम घर में ही बैठे हो। 10 वर्ष का होने पर सत्या ने आसपास के गांव के समान पुट्टपर्ती में भी एक भजन मंडली की व्यवस्था की और उसका नाम पंडरी भजन मंडली रखा। इस मंडली के 18-20 लड़के पीली धोतियां और अंगरखा पहन, पैरों में घुंघरू बांध, हाथों में ध्वजा आदि लेकर रास रचाते थे। सत्या ने अनेक नवीन नृत्य गीत रच अपनी मंडली को सिखाए। गोपियों का यशोदा से बाल कृष्ण की चुगली करना, तंग आकर माता का बालक पर बिगड़ना, तप कृष्णा का भोलेपन का प्रदर्शन कर अनजान बनना, यही इन गीतों का विषय हुआ करता था। सत्या कभी कृष्ण तो कभी यशोदा बन उन बालकों के मध्य नाचता हुआ मानो साक्षात भागवत ही उनके नेत्रों के सम्मुख प्रस्तुत कर देता था। अपनी गीत रचना में सत्या ने उस प्रदेश में अज्ञात देवता का गुणगान भी आरंभ किया। एक अनोखे मंदिर, अनजान नदी और पांडुरंग विट्ठल के अन्ही एक अवतार का अपने गीतों से वर्णन कर उसने गांव वालों को चकित कर दिया। शिरडी नामक एक गांव, साईं नामक अवतार, द्वारका माई नामक मंदिर और उन सब के इसी स्थान पर अस्तित्व के विषय में उसके गीतों द्वारा प्रसारण होता। वे कौन हैं? वह गांव कहाँ है? किस देवता का वह अवतार है? इस प्रकार जब प्रश्न किए जाते तब वह मौन ही रहता। बालक सत्या से उन नवीन गीतों को सीख नाचते गाते आनंद विभोर हो उठते। एक दिन सब लड़के कदरी के नरसिंह अवतार की महिमा का वर्णन करते हुए एक सुंदर गीत अपने समुद्र कंठ से तल्लीन हो गा रहे थे। गीत के मध्य लौह स्तंभ को चीर आए वह देवता, इस पंक्ति के उच्चारण के साथ ही सत्या ने भी सिहनाद करना आरंभ कर दिया। भयंकर होते हुए भी उसका यह आवेशपूर्ण स्वरूप अट्टहास पूरित नृत्य अति मनोहर प्रतीत हो रहा था, परंतु लोग चकित हो भयभीत होने लगे। नरसिंह का दमन करने में भला कौन सफल हो सकता है? पुष्ट मल्ल कहलाने वाले सत्या को वश में नहीं कर सके। अंत में कपूर आरती व नमस्कार करते लोगों की प्रार्थना से ही नरसिंह अवतार की वह तीव्रता शांत हो पाई। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि यह बालक सत्य ही अलौकिक दैवी शक्ति का रूप है। इस घटना का समाचार चारों ओर फैल गया। पुट्टपर्ती की भजन मंडली की कीर्ति सुनकर आसपास के ग्रामवासी भी उसकी ओर आकर्षित होने लगे। इसी मध्य एक अन्य घटना घटी। कहीं से हैजे और चेचक की बीमारियां धर्मावरम एवं पेनुकोंडा तहसीलों में प्रवेश कर अपना तांडव दिखाने लगी। हजारों की संख्या में लोगों का इन सहारक व्याधियों की बलिवेदी पर बलिदान होने लगा। किंतु यह एक अत्यंत आश्चर्य की बात थी कि पुट्टपर्ती तथा उसके आसपास के प्रदेश में इन व्याधियों का नामोनिशान तक न था। पंडरी भजन मंडली के भजन तथा साक्षात नरसिंह देवता का आवासी उन गांवों की रक्षा करता है। इन श्रद्धायुक्त भावनाओं के आसपास के ग्रामवासी भजन गोष्ठी की ओर आकर्षित हुए। वे मंडली के बालकों को अपने ग्राम में बुलाकर भजनों द्वारा वातावरण शुद्ध करने का निमंत्रण देने लगे। खुले मैदानों में पौराणिक कथाओं पर आधारित नाटक प्रवचन आदि हुआ करते थे। राजू परिवार में सदा किसी न किसी नाटक का अभ्यास होता ही रहता था। देख सुनकर बालकों को भी नाटक के संवाद कंठस्थ हो जाते थे। युद्ध निधि एवं अकाल पीड़ितों के लिए धन इकट्ठा करने के लिए पुट्टपर्ती नाटक मंडली ने बुक्कापट्टनम, कोत्ताचेरुवू आदि ग्रामों में अपने नाटक प्रस्तुत किए। बाणासुर, उषा परिणय, कंसवध, द्रौपदी मान संरक्षण आदि नाटकों ने जनता को विशेष रूप से आकृष्ट किया। इन नाटकों में कृष्ण तथा मोहिनी का अभिनय सत्या ही करता था। अपने नृत्य कौशल से सत्या नाटकों में चार चांद लगा देता। उसका तांडव नृत्य का प्रदर्शन अप्रतिम होता था। नृत्य की गति तथा तालक्रम का अभ्यास करने की उसे कोई आवश्यकता नहीं थी। उसका नृत्य देखकर प्रेक्षकों को ऐसा प्रतीत होता मानो उसके चरण पृथ्वी पर पड़ ही नहीं रहे हों, वह हवा में ही नृत्य करता हो। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए सत्या को उर्वाकोंडा कमलापुर आदि जाना पड़ा, किंतु गर्मी की छुट्टियों में जब वह अपने ग्राम वापस आता तब उसके साथ ही उसे खींचकर रंगमंच पर ले जाते। उस समय कनक तारा नाटक अत्यंत लोकप्रिय था। तारा का अभिनय सत्या किया करता था। यह एक दुखांत नाटक था। कनक और तारा को पग पग पर कष्ट झेलने पड़ते हैं। राजा उनसे नाराज रहता है और अंत में तारा को प्राण दंड देता है। सत्या तारा का अभिनय इतनी सहज एवं स्वाभाविक रीति से करता था कि एक बार तो प्रेक्षकों के बीच बैठी ईश्वराम्मा भयभीत हो अपने पुत्र को बचाने के लिए रंगमंच पर ही पहुंच गई। उन दिनों को याद कर उनका वर्णन करते हुए बाबा आज भी हंसते हैं। सात साड़ियां लपेटकर भी हास्यास्पद न दिखते हुए द्रौपदी का अभिनय करना, आंखों में आंसू लाने के लिए प्याज का प्रयोग और कभी अपने गीत की पंक्तियां भूल जाने पर अभिनेता का मनचाही गीत रचना आदि घटनाओं का वर्णन करते हुए बाबा हंसते हैं। इन्हीं दिनों में बुक्कापट्टनम में एक नाटक कंपनी ने अपना डेरा डाला। इस नाटक कंपनी में ऋषेन्द्र मणि नामक नृत्य में प्रवीण एक बालिका थी। यह बालिका अपने मस्तक पर एक तश्तरी में दीप रख ताल एवं मृदंग की ध्वनि के साथ नृत्य करती हुई नीचे बैठती और लेट भी जाती, फिर उसी मुद्रा से उठकर पृथ्वी पर रखा हुआ रूमाल उठाकर नाचती हुई खड़ी हो जाती। तश्तरी में दीप ज्यों का त्यों जगमगाता रहता। यह एक अत्यंत साहसपूर्ण कार्य था। लोग उसके कौशल को देखकर अवाक रह जाते। सत्यनारायण ने अपनी बहनों के साथ इस कंपनी के कई नाटकों को देखा। इस नाटक को देखने के बाद उसने भी घुंघरू बांध अपने कमरे में नृत्य करना आरंभ किया। ऋषेन्द्र पूज बालक ने अपने नृत्य कौशल से नर्तकी निशेन्द्र मणि को परास्त कर दिया। बस फिर क्या था, बहनों ने भाई से कहा, भाई ने अपने स्नेहियों से कहा और पलक झपकते ही यह समाचार संपूर्ण ग्राम में फैल गया। सब उससे बार बार नृत्य करवाकर आनंद विभोर हुए। प्रदेशी अकाल निवारण निधि के लिए कुत्तचेरवू यात्रा के समय पुट्टपर्ती मंडली ने कंसवध नाटक प्रस्तुत करने का निश्चय किया। टिकटों का अधिक विक्रय करने के स्वार्थ से एक व्यवस्थापक ने ऋषेन्द्र मणि का नृत्य होगा ऐसा विज्ञापित करवा दिया। सत्या के नाट्यकला नैपुण्य तथा नृत्य पर उसको इतना विश्वास था। विज्ञापन देखकर बेचारे वेंकप्पा राजू भयभीत हो गए। उन्हें क्रोध भी आया, अरे क्यों झूठ बोलते हो, यह कैसा अन्याय है, यदि लोगों को सत्य का पता लग गया तो वे भड़क जाएंगे और हमारी क्या दशा होगी। पर करते क्या, अन्य कोई उपाय न सूझने पर हताश हो सत्या को ऋषेन्द्र मणि के ही समान स्त्री वेश में सजाकर अत्यंत सावधान एवं गुप्त रीति से कुत्तचेरवू नाटक मंदिर में ले जाया गया। गीत गूंजने लगे। कंस के दरबार का दृश्य ता तिरकिट थई। बालिका रंगस्थल में आई। नृत्य आरंभ हुआ। सत्या का नृत्य कौशल देख जनता के लक्ष्य में यह बात आई ही नहीं कि सामने नाचती मूर्ति ऋषेन्द्र मणि नहीं वरन उनका अपना सत्या है। सत्य ने बालिका से भी उन्नत श्रेणी का नृत्य कर दिखाया। धरती पर रखी हुई सुई अपनी पलकों से उठा ली। बहुत समय तक तालियों की झड़ी लगी रही। अध्यक्ष तथा अन्य लोगों ने अनेक पदक एवं पुरस्कार उस ऋषेन्द्र मणि को प्रदान किए। ईश्वराम्मा को भय हुआ कि कहीं उसके लाड़ले को नजर न लग जाए। उसका भय सत्य प्रमाणित हुआ। दूसरे ही दिन सत्या की आंखें सूज कर लाल हो गईं। कुछ लोगों ने कहा कि यह जादू टोने का प्रभाव है, तो कुछ ने कहा ये अन्य नाटक मंडली वालों के दुष्ट संकल्प एवं क्रिया का प्रभाव है। कहते हैं उसी रात सत्या के पास सोती हुई शरामा को कमरे में किसी के प्रवेश करने की आहट सुनाई दी, परंतु कोई दिखाई नहीं दिया। पादुकाओं की वह ध्वनि सत्या के बिछौने के पास आकर थम गई। कुछ समय पश्चात पुत्र के कपाल स्पर्श से ईश्वरम्मा ने पाया कि ज्वर नहीं है। दूसरे दिन सवेरे उठने पर सत्या की आंखें सदा की भांति जगमगा रही थीं।
आप सुन रहे थे प्रेमावतार श्री सत्य साई प्रोग्राम के तहत भगवान बाबा की जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित कुछ एक अलौकिक प्रसंग।
अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में है भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं टीम रेडियो साय के प्रिय सदस्य श्री अनिरुद्ध श्रीनिवासन जी।
गुरु महिमा गाओ,
श्री साई राम। रेडियो साई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज की कक्षा के लिए हमने गुरु वंदना से सुसज्जित ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं।
गुरु महिमा गाओ, गुरु महिमा गाओ, गुरु महिमा गाओ। सद्गुरु साई अनंत गुरु, ब्रह्मानंद आनंद गुरु, सर्व धर्म प्रिय साई गुरु, गुरु की वाणी गाओ।
आज की कक्षा के लिए इस भजन को डी पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे सफेद दो भी कहते हैं।
गुरु महिमा गाओ,
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 गुरु महिमा गाओ।
सद्गुरु साई अनंत गुरु,
सद्गुरु साई अनंत गुरु,
सद्गुरु साई अनंत गुरु,
सद्गुरु साई अनंत गुरु,
ब्रह्मानंद आनंद गुरु,
ब्रह्मानंद आनंद गुरु,
ब्रह्मानंद आनंद गुरु,
ब्रह्मानंद आनंद गुरु,
सर्वधर्म प्रिय साई गुरु,
सर्वधर्म प्रिय साई गुरु,
साई गुरु सत्य साई गुरु,
సాయి గురు సత్య సాయి గురు
సాయి గురు సత్య సాయి గురు
సాయి గురు సత్య సాయి గురు
గురు కీ వాణీ గావో
గురు కీ వాణీ గావో
గురు కీ వాణీ గావో
గురు కీ వాణీ గావో
గురు మహిమా గావో
कहरवा ताल पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद आइए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। मोटे तौर पर इस भजन में गुरु की स्तुति की गई है। गुरु महिमा गाओ। गुरु वैसे तो इसका शाब्दिक अर्थ है ज्ञान देने वाला, किंतु भगवान बाबा इसके गूढ़ अर्थ की व्याख्या करते हुए समझाते हैं कि गु का मतलब अंधकार से है और रू का तात्पर्य प्रकाश से। सच्चे गुरु मन के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश से दूर कर देते हैं। गु का मतलब गुणातीत और रू का मतलब रूप वर्जित, अर्थात जो सभी गुणों और चीजों के स्वरूप के परे हो वह गुरु है, ऐसा अर्थ भी भगवान ने समझाया है। भगवान ने एक बार अपने एक भक्त से कहा था कि आजकल के गुरुओं के जीवन को अगर हम करीब से देखें तो पता चलता है कि वे भी इच्छाओं और चिंताओं से घिरे हुए हैं। उनको ईश्वर का सिर्फ किताबी ज्ञान ही हासिल है या सुनी सुनाई बातों से ही ज्ञान प्राप्त हुआ है, खुद का कोई अनुभव नहीं है। ऐसे लोग आम आदमी की तरह संसार को भोगने में फंसे हैं। वे हमें अपनी स्थिर अवस्था तक कैसे पहुंचा सकते हैं? एकमात्र ईश्वर ही सच्चे गुरु हैं, उन्हें पुकारो, वे तुम्हारा पथ प्रदर्शन करेंगे। वे तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं, तुम्हारी सहायता, सुरक्षा एवं मार्गदर्शन करने के लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं। भगवान ने एक परिवार से साक्षात्कार के दौरान कहा था कि मनुष्य को मुझ तक बिना गुरु के पहुंचने के लिए लाखों जन्म लेने पड़ेंगे, लेकिन अगर गुरु साथ है तो मुझे पाने में क्षण भर भी नहीं लगेगा। हम कितने भाग्यशाली हैं कि सर्व देवतातीत स्वरूप भगवान श्री सत्य साई बाबा स्वयं हमारे गुरु हैं। हमारे पास ईश्वरीय चेतना स्वयं ही हमें अपने पास ले जाने के लिए उपलब्ध है। सद्गुरु साई अनंत गुरु। सद्गुरु का अर्थ होता है सत्य का बोध कराने वाला, और जब हमें परमपिता परमेश्वर स्वयं गुरु के रूप में मिल जाएं, तो कैसा होगा? इस लाइन में हम भगवान श्री सत्य साई बाबा की सद्गुरु के रूप में अनंत और अखंड उपलब्धता को स्मरण करते हुए चिंतन करते हैं। ब्रह्मानंद आनंद गुरु। ब्रह्मानंद यानी सृष्टि के कण कण में सर्वत्र व्याप्त ब्रह्म को जान लेने से प्राप्त होने वाला आनंद, इसे परमानंद भी कहते हैं। अतः भजन की इस पंक्ति में हमें ब्रह्मानंद से प्राप्त होने वाले आनंद का बोध कराने वाले हमारे गुरु जो कि भगवान श्री सत्य साई बाबा हैं का गुणगान करते हुए भजते हैं। सर्वधर्म प्रिय साई गुरु। इस पंक्ति में हम भगवान श्री के जो हमें गुरु के रूप में मार्गदर्शित करने के लिए उपलब्ध हैं सर्व धर्मों के प्रति प्रेम का वर्णन करते हैं, और इस प्रकार जानते हैं कि भगवान हम सब से भी सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा भाव रखने की अपेक्षा करते हैं। गुरु की वाणी गाओ। गुरु की वाणी मतलब गुरु के वचन, उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं। भजन की ये पंक्ति हमें प्रेरणा देती है कि हम गुरु के रूप में प्राप्त सर्वेश्वर भगवान श्री सत्य साई बाबा जी के संदेश जनमानस तक पहुंचाएं। और गुरु के वचनों को औरों तक पहुंचाने में सफलता तभी मिलेगी जब हम उन्हें स्वयं आचरण में लाएंगे। यहां भगवान बाबा के पोलैंड निवासी भक्तवर श्री यरोशावो रेंकोविच जी के दिव्यानुभवों से जुड़ी एक घटना स्मरण में आती है। उन्होंने बताया था कि सन 1990 में भगवान बाबा के चित्र और वीडियो देखकर ही उनमें परिवर्तन होना प्रारंभ हो गया था। भगवान के उपदेशों ने उनका ध्यान आकर्षित किया। वे कहते हैं कि भगवान की शिक्षाएं सरल और हृदय को छू लेने वाली हैं। जब उन्होंने बाबा के बारे में सुना तो वे उनके प्रवचनों को पढ़ने लगे। हालांकि उनका परिवार एक छोटे से गांव में रहता था जहां उन सबका प्रमुख भोजन मांसाहार ही था, इन्होंने बाबा के प्रवचनों से प्रेरित होकर मांसाहार त्याग दिया और बाद में मद्यपान और धूम्रपान करना भी बंद कर दिया। भगवान की शिक्षाओं का ऐसा आश्चर्यजनक प्रभाव लोगों पर पड़ता है। रेंकोविच जी कहते हैं कि उन्हें आनंद की जो अनुभूति होती है वो मन से नहीं बल्कि अंतरात्मा से उत्पन्न होता है, ऐसा आभास उन्हें होता है। वे कहते हैं, मुझे भगवान बाबा के मधुर वचनों से बहुत लगाव महसूस होता है। जैसे ही उनके संभाषणों को पढ़ता हूं तो आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। इस हृदयग्राही अनुभव से ये तो स्पष्ट है कि कैसे भगवान की शिक्षाओं ने इन जैसे लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दिया है और ये आज भी निरंतर जारी है। भगवान के वचनों को हम अपने जीवन में उतार कर ही उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। इस प्रकार भजन के भावार्थ को समझकर हम सब एक बार पुनः इस भजन को प्रशांति मंदिर में गाई जाने वाली रीति के अनुसार गाते हैं।
गुरु महिमा गाओ, 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 सतगुरु साई अनंत गुरु, सतगुरु साई अनंत गुरु,
हमारे भजन शिक्षा कार्यक्रम की आज की कक्षा का समापन होता है। हमें आशा है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। सुनते रहिए साई प्रेम वाणी। सधन्यवाद। साई राम।
प्रस्तुत है हमारा आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज हम अंकल लायंस टेल्स के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से ली गई एक कहानी का हिंदी रूपांतरण इसमें सुनेंगे, जिसका शीर्षक है दो भेड़िए।
दो भेड़िए।
सर, आप चाहते हैं कि खिलाड़ियों का चरित्र अच्छा हो, क्या मेरे चरित्र का मेरे खेलने पर भी प्रभाव पड़ता है?
हाँ मिकी, तुम्हारा सीख पाना तुम्हारे चरित्र पर निर्भर करता है, और कितना धीरज रखकर सीखते रहते हो उस पर भी। इसीलिए तुम्हें लगन से वो सारे गुण अपनाने चाहिए जिनसे तुम्हारे चरित्र का निर्माण होता है।
बेटा, क्या तुम जानते हो मेरे मन के भीतर भावनाओं का कैसा द्वंद चलता रहता है? लगता है जैसे मन के अंदर दो भेड़िए हर वक्त जूझते रहते हैं। एक लालची, झगड़ालू और ईर्ष्यालु है, और दूसरा उदार, स्नेहमय और दयालु है।
मन की लड़ाई में जीत किसकी होगी पिताजी?
जिसको मैं पालता पोसता रहूंगा।
क्रोध, अहंकार और दूसरे अवगुण इंसान को पशुवृत्ति की तरफ ले जाते हैं। क्रोध हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और शांति रक्षा कवच। गुस्सैल आदमी से सब नफरत करते हैं, क्योंकि गुस्से में वह कई पाप कर बैठता है। गुस्सा कमजोर तन से नहीं, कमजोर मन से उपजता है। मन की शक्ति को बढ़ाने के लिए और उसकी कमजोरी हटाने के लिए मन में सदा अच्छे विचार रहने चाहिए।
अभी आप सुन रहे थे आदर्श जीवन आनंद उपवन। अंकल लायंस टेल्स के रूप में विख्यात हमारी एनिमेशन सीरीज से दो भेड़िए नामक शीर्षक की एक कहानी का हिंदी रूपांतरण आज इसमें प्रस्तुत किया गया था। चलिए अब सुनते हैं दिव्य संदेश। भगवान के एक दिव्य संभाषण से लिए गए इस भाग में वे शिक्षाओं के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालते हुए हमारे लिए सबसे उपयोगी आत्मविद्या के विषय में जानकारी दे रहे हैं।
ఫేమస్ స్వరూపులారా, ఈనాటి విద్యలు ఎందు అనేక విధములైనటువంటి అవలక్షణములంతా చేరుతున్నాయి.
ఆజకల్ కే శిక్షా సే అచ్చే లక్షణ కే బజాయ్ అవలక్షణ పైదా హో రహే.
విద్య అనగా కేవలము ఆత్మ విద్య, నిజమైన విద్య.
జిత్ని విద్యాయే హే శిక్షా కే ప్రకార హే, సబ్మే ఉత్తమ ప్రకార కే శిక్షా హే ఆత్మ విద్య.
ఇలాంటి ఆత్మ విద్య ఒక ఆధ్యాత్మికమునందే ప్రాప్తిస్తుంది.
ఆధ్యాత్మికతా కే సహారే హి ఆత్మ విద్య ప్రాప్త కీ జా సకే.
ఆధ్యాత్మిక విద్య అనగా ఏమిటని మనం ఒక్కచోటి విచారిస్తుంటే, మానవుని యందు అంతర్భూతమై ప్రకాశవంతమై నిశ్చలత్వమై నిర్మలత్వమై ఆనందమయమైనటువంటి ఒక తత్వమును అభివృద్ధి గావించుకోవటమే ఆధ్యాత్మికము.
ఆధ్యాత్మిక విద్య మానే క్యా హై అగర్ సోచా జాయ్ తో అప్నే అందర్ కే జో ప్రకాశ తత్వ హై, నిర్మలతా హై, నిశ్చలతా హై, ఉస్ దివ్యతా కో పహచాన్నా హి
ఆధ్యాత్మికత. మన నుండి ఆవిర్భవింప చేసుకోవటానికి కొన్ని సాధనలు మనకు అవసరం.
అప్నే అందర్ కే దివ్యతకో పహచాన్నే కే లియే కై సాధన హై.
దీనిని దివ్య శక్తి అనేటువంటిది ప్రతి మానవుని ఎందు కూడాను ఒక కరెంట్ వలె ఉంటుండాలి.
ఇసీ కో జో దివ్య శక్తి కహా జాతా హై, ప్రత్యేక ప్రాణి కే అందర్ బిజ్లీ కీ ధారా కీ తరహ విద్యమాన్.
దీనిని విల్ పవర్ అని కూడా చెప్తూ వచ్చారు.
ఇసీ కో ఇచ్ఛా శక్తి కహా జాతా.
ఇది కరెంట్ కంటే చాలా తీవ్రమైనటువంటి బలం కలిగినటువంటిది.
ఈ బిజ్లీ సే భీ జ్యాదా జోర్దార్.
ఈ కరెంటు మనిషి వెంట్రుకల ద్వారా, కన్నుల ద్వారా, వేలి గోర్ల ద్వారా బహిర్గతమవుతుండాలి.
ఏ శక్తి హై మానవ కే కేశం కే ద్వారా, నాఖూనోం కే ద్వారా, ఆంఖోం కే ద్వారా ప్రకట్ హోతీ హై.
ఇది క్రమక్రమేణప్పుడును వృథా కాకుండా మనం కొన్ని అభివృద్ధి గావించుకునేటువంటి ప్రయత్నములు మనం చేయాలి.
ఏ శక్తి బేకార్ నా జాయ్ ఉస్కా హమ్ అచ్చే సే అచ్చా ఉపయోగ కర్ సకే, ఇస్లియే కోషిష్ కర్నీ చాహియే.
ఇది మితాహారము చేతను, సాత్విక ఆహారము చేతను, ఇంద్రియ నిగ్రహము చేతను ఇది అభివృద్ధి అవుతుంది.
ఇస్కే సాధన హై జో కుచ్ ఖాతే హై మిత్ ఢంగ్ సే ఖాయే, పరిమిత్ ఢంగ్ సే ఖాయే, సాత్విక్ భోజన్ ఖాయే ఔర్ ఆత్మ సంయమ రఖే, ఇస్ ప్రకార్ సే యే సాధన.
నిజముగా మానవుని యొక్క జీవితము నవగ్రహములపైన ఆధారపడలేదు. రాగము ద్వేషము అని రెండు గ్రహములపైన ఆధారపడి ఉంటుండాలి.
మానవ కా జీవన్ నవ్ గ్రహం పర్ నిర్భర్ నహీ హై, లేకిన్ దో హీ గ్రహం పర్ నిర్భర్ హై ఔర్ వహీ హై రాగ్ ఔర్ ద్వేష్.
ఈ రాగ ద్వేషముల చేతనే తన జీవితాన్ని అంత్యం గావించుకుంటున్నాడు.
ఇస్ ఇన్హీ దో గ్రహం కే చక్కర్ మే ఆకర్ కే వో అప్నే జీవన్ కో బర్బాద్ కర్ రహా.
సుఖము ఏనాడు అనుభవిస్తున్నాడో అర్థం కావటం లేదు.
వో కబ్ సుఖీ బనేగా సమజ్ మే నహీ ఆతా.
బాల్యమంతా కూడాను అమాయకత్వంగా ఉంటుండాలి.
బచ్పన్ సారా పోలాపన్ మే చలా జాతా హై.
యవ్వనమంతా కూడాను తప్పుల తడకగా ఉంటుండాలి.
యవన్ సారా అవ్యవస్థ మే చలా జాతా హై.
మధ్య వయస్సు పోరాటంతో గడుపుతున్నాడు.
బీచ్ కి ఉమర్ హై వో ఝగడే మే చలీ జాతీ హై.
వృద్ధాప్యము చింతలతో ముగిస్తున్నాడు.
బుఢాపా పరేషానియో సే భరా హువా హై.
ఇంక ఏనాడు మానవుడు సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాడు?
ఫిర్ కబ్ ఆద్మీ సుఖ్ పా సక్తా హై.
సుఖము చూడ బోవా సున్నయే. జీవితానికి సుఖమనేటువంటిది ఏమాత్రం మనకు కనిపించటం లేదు.
కహా సుఖ హై ఇస్కే ఖోజ్ కర్కే దేఖా జాయ్ తో లగతా హై కే సూనా హై, శూన్య హై.
కనుకనే త్యాగరాజు, నిధి చాలా సుఖమా, ఈశ్వర సన్నిధి చాలా సుఖమా, నిజముగ తెలుపు మనసా అన్నాడు.
ఇసిలే త్యాగరాజుని కహా కి సంసార్ కి నిధి సబ్సే అచ్చీ హై యా పరమాత్మా కి సన్నిధి అచ్చీ హై.
మానవుడు ఒక్క దైవాన్ని మాత్రమే ఆశ్రయించి, దైవమును మాత్రమే విశ్వసించి, దైవం యొక్క అండదండలో జీవించటమే నిజమైన జీవితంగా ఉంటుంటారు. ఇతరులను నమ్మటం చేత గాని, ఇతరులపైన ఆధారపడటం వల్ల కాని మానవుడు ఏమాత్రం కూడాను సుఖశాంతులను అనుభవించడు.
జో ఆత్మీ భగవాన్ పర్ విశ్వాస్ రఖతా హై, భగవాన్ కే భరోసే జీనా చాహతా హై, వహీ సుఖీ బన్ సక్తా హై. దూసరం కే భరోసే, దూసరం పర్ విశ్వాస్ కర్కే జో జీనా చాహతా హై, ఉస్కే లియే సుఖ వ్యక్తి.
మన మహారాష్ట్ర యొక్క పరిస్థితి కూడాను మీకు చాలా వరకు తెలిసే ఉంటుంది.
మహారాష్ట్ర కే స్థితి సే అపరిచిత్.
పూర్వము మహారాష్ట్ర దేశము బ్రిటిష్ వారితో పోరాటానికి అనేక విధములుగా కూడాను ప్రయత్నాలు సలిపింది.
పురానే జమానే మే మహారాష్ట్ర నే విదేశీయుల కే సాథ్ యుద్ధ కర్నే కే లియే కై ప్రకాశ్ ప్రయాస్ కియే.
బ్రిటిష్ వారిని ఎదుర్కొనుటకై పోర్చుగీస్ వారితో అనేక విధములైన ఆయుధాలను సంపర్కంగా తీసుకోవటానికి ప్రయత్నించింది.
అంగ్రేజం కా సామనా కర్నే కే లియే పోర్చుగీస్ సే ఉన్హోనే కై ప్రకార్ కే సంఝౌతా కర్కే అస్త్ర శస్త్ర ప్రాప్త్ కర్నే కా ప్రయాస్ కియా థా.
తమ శక్తులపైన తాము ఆధారపడకోకుండా కేవలము ఒక పోర్చుగీస్ వారిపైన ఆధారపడింది.
उन्होंने अपनी शक्ति पर निर्भर करना उचित नहीं समझा बल्कि पोर्चुगीज पर निर्भर रहना उचित समझा है।
मराठवाड़ा को मुख्य पट्टणमैनटुवंटि ओक पूना పూనా నందు శనివారం వాడపేట అనేటువంటిది దీని కోట పైన బ్రిటిష్ పతాకం ఎగిరింది.
మరాఠ్వాడే మే జో పూనా శహర్ హై ఉస్మే శనివారం పేట్ మే అంగ్రేజోం కి పతాకా ఫహరాయి గయీ థీ.
ఈ బ్రిటిష్ వారి పతాకం ఎగరడానికి కారణం ఏమిటి?
అంగ్రేజోం కా ఝండా ఇస్ ప్రకార్ ఫహరాయా గయా ఇస్కా కారణ క్యా హై?
తమ శక్తుల పైన తాము ఆధారపడక పరశక్తుల పైన మనం ఆధారపడటం చేతనే ఈ విధమైన పరాభవం జరిగింది.
అప్ని శక్తిగా భరోసా చోడు కరికే దూసరం కి శక్తి పర్ నిర్భర్ రహనే కి ప్రవృత్తి ఇస్కా కారణం.
కనుక ఇతర వ్యక్తుల పైన కానీ ఇతర శక్తుల పైన కానీ మనం ఆధారపడలేక్కర్లేదు. ఆత్మశక్తి పైన ఆధారపడాలి, దైవశక్తి పైన ఆధారపడాలి, ధర్మశక్తి పైన ఆధారపడాలి.
किसी व्यक्ति पर किसी शक्ति पर भरोसा नहीं रखना चाहिए, अपनी आत्मशक्ति पर, दैव शक्ति पर, आध्यात्मिक शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए।
अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश, भगवान के एक दिव्य संभाषण से लिए गए। इस भाग में बाबा शिक्षाओं के विभिन्न प्रकारों पर प्रकाश डालते हुए हमारे लिए सबसे उपयोगी आत्मविद्या के विषय में जानकारी दे रहे थे।
अब प्रस्तुत है साई का प्यार जीवन आधार। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम भगवान बाबा के एक वरिष्ठ विद्यार्थी श्री अनिंद्या जी दास गुप्ता के साथ भगवान बाबा के एक और वरिष्ठ विद्यार्थी श्रीमान कपिल जावा जी के मध्य हुई भेंट वार्ता सुनेंगे। ये वार्ता रेडियो साई के स्टूडियो में जनवरी 2019 को रिकॉर्ड की गई थी।
ओम श्री साई राम। आज हमारे साथ रेडियो साई स्टूडियो में है अनिंद्या दास गुप्ता। अनिंद्या, आप बहुत ही भाग्यशाली रह चुके हैं, आप स्वामी के स्टूडेंट रहे हैं और सन 1981 में आप यहाँ पे आए थे और स्वामी के स्टूडेंट बने थे। और आज प्रेम बंधम का टाइम है जब सारे विद्यार्थी जो स्वामी के कॉलेजेस से पास होकर निकले हैं आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो ऐसा क्या है अनिंद्या कि आप 10 साल स्वामी के स्टूडेंट रहे, सन 1990-91 में आपने स्वामी के कॉलेज से पढ़ाई खत्म करी और आज कम से कम मेरे ख्याल से 27-28 साल हो चुके हैं, फिर भी मैं आपको देखता हूं हर साल 1 जनवरी को आप यहां पर आते हैं, एकत्रित होते हैं। ऐसा क्या है जो आपको पुटपर्ती लेकर आता है हर साल?
सबसे पहले कपिल, ये जो आपने बात बताई है ये एक दिल से आने वाली फीलिंग है और एक कृतज्ञता मैं कह सकता हूं कि हम लोग स्वामी के इतने आभारी हैं जो हम मेंशन भी नहीं कर सकते, हम जिसको ना लिख सकते हैं ना हम इसे बोल सकते हैं। ये एक प्यार, एक प्रेम है जो खींच लाती है हर साल। और जैसे कि स्वामी ने बॉयज को हमेशा बोला था कि आप जरूर आइएगा 31st को, तो वही एक दिमाग में रहता है। नवंबर दिसंबर आते ही एक तरंग सी महसूस होती है और कहीं भी हम लोग होते हैं हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि यहां पहुंचे। और स्वामी की ग्रेस इतना है कि कोशिश करते हैं और स्वामी कैसे ना कैसे करके थोड़ा सा फ्री टाइम दे देते हैं कि हम लोग यहां आके वही महसूस करें कि हम अपने घर वापस आ चुके हैं यहां पे। सो एक बहुत लाजवाब फीलिंग होती है यहां पे आके।
नहीं, बिल्कुल ठीक कहा आपने, असली घर, असली हमारा धाम तो है पुट्टपर्ती,
कोई शक नहीं है एकदम।
लेकिन एक बात बताइए, आप दिल्ली में रहते हैं, आप फेडएक्स में ट्रेनिंग फंक्शन, सेल्स ट्रेनिंग फंक्शन हेड करते हैं और मैं रेडियो साई के श्रोताओं को यह बताना जरूर कहूंगा कि अनिंद्या फेडएक्स की ट्रेनिंग सिर्फ इंडिया में ही नहीं, मिडल ईस्ट और अफ्रीका को भी हेड करते हैं। तो आप इतनी सीनियर पोजीशन पर हैं कंपनी में और इस वक्त हर कंपनी के लोग और काफी सारे लोग दिल्ली में पार्टी कर रहे होते हैं। कुछ ऐसा एक्सपीरियंस, कुछ ऐसा अनुभव जो आपने किया पुट्टपर्ती में या वृंदावन में जहां पड़े, जो आपको दिल को छू गया और वो एक आधार बन गया कि चाहे कुछ हो मैं स्वामी सारा जीवन मैं स्वामी के पास रहना चाहता हूं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बताइए।
मुझे इनफैक्ट थोड़ी सी हंसी जरूर है जब आपने बोला कि आप ये हेड करते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात है हर एक नौकरी जो मुझे आज तक भगवान ने दिया, बिलीव करेंगे ये सिर्फ स्वामी के अनुग्रह की वजह से हम सबको या मुझको मिली है। क्योंकि हम लोग एक ऑर्डिनरी बीएससी हम लोगों ने यहां से किया था, तब हमको याद है स्वामी ने बोला था कि मेरे स्टूडेंट्स जो यहां से ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट्स पास करते हैं उनको छत, नौकरी और पैसे की कभी कमी नहीं होगी, इट बी वेरी मिनिमम। और वो ही हरेक जो मैंने इंटरव्यू दिया है, आप बिलीव करेंगे मेरे फर्स्ट इंटरव्यू में मुझे ये पूछा गया था कि आप क्या आप वेदा चैन कर सकते हैं, और मैंने वेदा चैन करके मेरी सबसे पहले मेरी नौकरी मुझे मिला था सिर्फ वेदा चैन। तो ये मैं अपने आपको किसी भी हाल में किसी भी तय समय क्रेडिट नहीं देना चाहूंगा, सारा क्रेडिट जाता है स्वामी को। जैसे कि आपने मेरे से पूछा तो मुझे स्वामी से सबसे जो बढ़िया चीज ये सीखने को मिला है कि स्वामी हर एक कॉम्प्लेक्स चीजें को जो हमारे ऋषि मुनि वेद में सब जगह लिखा है उसको बहुत बहुत ही सिंपल भाषा में स्वामी उसको ऐसे पेश करते हैं कि कोई भी एक व्यक्ति जिनको इतना ज्ञात नहीं हो वेद महाभारत उपनिषद का, वो हर एक मैसेज स्वामी को इतनी आराम से उसको टेक इन कर सके। क्या मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसमें आपसे शेयर करना चाहूंगा?
अवश्य अवश्य।
तो वृंदावन में एक दिन मुझे ध्यान है किसी ने स्वामी से पूछा था सबके सामने, हम लोग, मैं ये बात कर रहा हूं अप्रोक्सीमेटली 1988-89 की बात है, तो हम तो मैं ग्रेजुएट वहां से कर रहा था बीएससी बायो साइंस में, तो किसी ने स्वामी से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही सिंपल सवाल पूछा था, और ये सवाल बहुत कॉम्प्लेक्स भी था कि स्वामी इस जगत में रहते हुए, इस दुनिया में रहते हुए हम प्रभु के पास कैसे जाएं। ये देखेंगे कपिल, ये सवाल ऑल दो बहुत जनरल है बट ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है कि इस जगत में, इस दुनिया में रहते हुए मैं ईश्वर को कैसे प्राप्त करूं। और ये जो सवाल है आप देखेंगे बहुत लोग बहुत ही जो गुणी व्यक्ति है, जो इतने सारे आप जो ऋषि मुनियों के जो भाषा सुनते हैं सवेरे 7 बजे 8 बजे जो टेलीविजन में आते हैं वो इसी के ऊपर चर्चा होती है, घंटों चले जाते हैं लेकिन लोगों को समझ एग्जैक्टली उसका जो अर्थ है उसको समझ में नहीं आता। स्वामी ने इतना कॉम्प्लेक्स सवाल एक मिनट में इतना बढ़िया तरीके से स्वामी ने उसका बताया है कि मेरे आज भी उसको सुनते हुए मुझे गूज़बम्स आते हैं। स्वामी ने बहुत इजी तरीके से बोला कि मैं थोड़ा सा इमिटेट करूंगा स्वामी का जो वो ब्यूटीफुल जो वॉयस है, कोशिश करूंगा। स्वामी ने बोला दुनिया क्या होता है, दुनिया होता है वर्ल्ड, WORLD। ठीक है, आप किसको पाना चाहते हो, ईश्वर को। ईश्वर क्या है, लॉर्ड, LORD। तो आप देखें वर्ल्ड के अंदर ही लॉर्ड मौजूद है, बाकायदा अगर आप जो W है उसको हटा दें और थोड़ा सा जंबल करेंगे तो आपको WORLD को जंबल करने के बाद आपको लॉर्ड मिलेगा। और ये सुनने के बाद हम लोग एकदम चकाचौंध हो गए। फिर स्वामी ने बहुत बढ़िया एडिशन स्वामी ने बोला लेकिन इस जंबल में आपको एक इम्पॉर्टेंट वर्ड हटाना पड़ेगा, अगर आपको दुनिया से, अगर आपको वर्ल्ड से, अगर आपको लॉर्ड में जाना है, और वो वर्ड क्या है, W। फिर स्वामी ने बहुत बेहतरीन तरीके स्वामी ने बोला और पता है W क्या होता है, 3 चीजें, वाइन, वेमेन एंड वेल्थ। कितना सरल तरीके से भगवान ने इतना कॉम्प्लेक्स चीज समझाया, अभी भी मुझे कहते हुए गूज़बम्प्स हो रहा है। वर्ल्ड को अगर आप जंबल करेंगे वो लॉर्ड हो जाता है, उसमें से एक अल्फाबेट निकाल के फेंकेंगे
तो
वो लॉर्ड हो जाता है। वो अल्फाबेट क्या है, W, जिसमें सिग्निफाई करता है जो सबसे 3 इम्पोर्टेंट वाइसेस है, वाइन, वेमेन एंड वेल्थ।
खूबसूरत, एकदम खूबसूरत। आई थिंक अगर शब्दों के साथ कोई खेल सकता था और आध्यात्मिक बातों को इतना आसान और इतने प्यार से समझा सकता तो स्वामी के सामने और कोई नहीं है। मैंने तो किसी को नहीं देखा कि शब्दों के साथ इस तरह से खेलते थे वो।
एकदम।
तो आपने बहुत ही अच्छी बात कही, आपने कहा कि अगर आपने भगवान प्रभु को पाना है तो आपको वेल्थ के पीछे नहीं भागना है। आपने इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा अनुभव शेयर कीजिए श्रोताओं के साथ कि जब आपने सिर्फ स्वामी के संदेश के पीछे गए, आपने फिक्र नहीं करी वेल्थ की लेकिन स्वामी ने आपका ख्याल रखा।
एकदम एकदम। मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से वाक्य याद आ रहा है कपिल, जैसे स्वामी बोलते थे हम लोग पूरी कोशिश आज भी कर रहे हैं उसको फॉलो करें कि आप काम पे ध्यान दें, रिजल्ट को मत सोचे, हम लोग पूरी कोशिश वहां करते हैं। और ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप ये फॉलो करेंगे, ब्लाइंडली बिलीव करेंगे, स्वामी कैसे ना कैसे करके आपकी मदद करेंगे। मैं वेल्थ की बात नहीं कर रहा बट वो आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज है लाइफ की वो आपको पक्का हेल्प करेंगे। मेरे साथ एक ऐसा वाकया, एक ऐसा किस्सा हुआ था जो कि मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं, दिस वॉज इन ईयर 1994-1995 के बीच में जो मेरी पहली नौकरी,
कॉलेज से निकले हुए 3-4 साल ही होंगे।
एग्जैक्टली। तो मेरी पहली जो जॉब है वो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी मैंने ज्वाइन किया, रनबैक से मैं वो काम कर रहा था।
और उस दौरान क्या हुआ, मैं बहुत लंबा अर्से तक बीमार पड़ गया था। मेरे फीवर आ गया था, फीवर कम नहीं हो रहा था, मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड था। और आपको पता है जो पहली नौकरी है इतनी आप सैलरी में नहीं आते हैं, सो काफी कम लिमिटेड सैलरी था और मुझे पैसे की भी सख्त जरूरत थी। और क्योंकि मैं और मेरी वाइफ थे तो मैंने ये बात मेरे पेरेंट्स को नहीं बता रखा था कि आई वॉज इन हॉस्पिटल।
अच्छा,
तो कैसे भी करके हम लोग मैनेज कर रहे थे, अच्छा खासा बिल आ रहा था। तो अचानक से आप बिलीव करेंगे, मैं अभी कह सकता हूं स्वामी ग्रेस, मेरे पास एक चेक आया था ऑफिस से अप्रोक्सीमेटली 15,000 से 20,000 के बीच में, मुझे एग्जैक्टली अमाउंट याद नहीं, शायद 18,000 या 19,000 के बीच में।
15,000 बहुत बड़ी रकम थी उस वक्त।
और वो जो चेक आया था वो मेरा जो हॉस्पिटल का बिल था, मेडिसिन का बिल था, एडमिशन का था, वो सब उसमें टेक केयर हो गया। तो मुझे लगा कि शायद ये चेक मेरे ऑफिस से आया हुआ था, बिकॉज वो चेक मेरे पास बाय पोस्ट आया था, बाय पोस्ट सरकारी पोस्ट आया था, जो कि कभी कोई प्राइवेट कंपनी बाय सरकारी पोस्ट से नहीं भेजेगा, वो कुरियर से भेजेगा। उसमें चेक वाकई मेरा नाम लिखा हुआ था, पे टू आनंद दास गुप्ता, अमाउंट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट 15,000 से 20,000 के बीच में था। और जब मैं अच्छी तरह से हो गया एंड दैट टू केयर ऑफ ऑल माय नीड्स, उसके बाद जब मैं ऑफिस फोन किया, मैंने सोचा शायद उनकी तरफ से आया होगा, तो मुझे सरप्राइज मिला कि नहीं, हम तो आपको ऐसे चेक भेज नहीं सकते बिकॉज पॉलिसी में नहीं है, लेकिन हम आपको थोड़े टाइम लगता। मैंने बहुत लोगों से पता किया, पेरेंट्स को तो मैंने बता नहीं रखा था वो चेक मेरे पास कैसे आया, कहां से आया, किसने उसको काटा, मुझे आज तक नहीं पता। बट ये बात पता है कि 100% वो स्वामी थे। एज अ पेरेंट्स जो हम लोग स्वामी को इतना ये करते हैं, और स्वामी के अलावा कोई हो ही नहीं सकता, वो आज भी कहीं से भी रिकॉर्ड्स में नहीं है। जब मैंने बात मेरे पेरेंट्स को बोली, मेरे पेरेंट्स वर सरप्राइज कि तुम मुझे बोलते, क्योंकि मैंने उनको नहीं बोला। तो उस वक्त मेरे पेरेंट्स कौन थे, स्वामी। सो स्वामी एज अ पेरेंट्स सब कुछ उन्होंने टेक केयर किया।
तो आपने सच्ची लगन से अपना काम किया अपनी कंपनी में, जब आपको जरूरत पड़ी स्वामी की ग्रेस आपके ऊपर आई, स्वामी का अनुग्रह आया आपके ऊपर, और आप अभी तक नहीं कह सकते कि वो कहां से वो चेक आया।
एकदम
ये सिर्फ स्वामी की ग्रेस ही है,
एकदम 100% स्वामी की ग्रेस के बगैर कुछ नहीं होता है, इसमें कोई शक नहीं है।
मैं जानता हूं कि आपका भाई भी यहां पे स्वामी के कॉलेज में ही पढ़ा है।
जी जी,
स्कूल से लेके उसने भी एमबीए तक पढ़ा, आपने भी पढ़े, लेकिन आप जब आए थे पुट्टपर्ती सन 1980 में, उस वक्त तो शायद स्कूल भी खुल ही रहा था यहां पर। वो एक एक्सपीरियंस बताइए कि आपने यहां पे स्कूल कैसे ज्वाइन किया, और आप तो राजस्थान जोधपुर के थे, तो यहां पे तेलुगु मीडियम में आपने स्कूल ज्वाइन किया। अपने हमारे रेडियो साई के श्रोताओं को वो कहानी सुननी जरूरी है।
मुझे सबसे ये चीज याद है, 1981 में उस टाइम सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं थे, और हम लोग जब ज्वाइन किए थे, हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे ईश्वरम्मा स्कूल में। तो उस टाइम एक्चुअली हम लोग ईश्वरम्मा स्कूल के विद्यार्थी थे, और तेलुगु एक सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाता था। अब आप देखिए, ये कोई हमारे क्रेडिट्स नहीं है, ये हमारे पेरेंट्स का क्रेडिट है जिन्होंने स्वामी के ऊपर छोड़ के चले गए। और क्योंकि मेरे पेरेंट्स जोधपुर से थे, हमारा काफी बड़ा परिवार था, तो मेरे फादर स्वामी के इतने ज्यादा डिवोटी नहीं थे, लेकिन मेरी मदर जो है डिवोटी थी, वो हमको यहां छोड़ के चले गए प्रशांति निलयम में। हमारे रिलेटिव्स बोलते थे, तुम अपने बेटे, मैं और मेरे यंग ब्रदर है, कि आप दोनों को प्रशांति निलयम छोड़ के आए, तेलुगु मीडियम में क्या एजुकेशन है, क्या स्टैंडर्ड है, कलकत्ता में जाओ, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज है। मेरी मम्मी ने कुछ भी नहीं सोचा। मुझे भी याद है, प्रोफेसर शास्त्री हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे ईश्वरम्मा स्कूल में, और हम लोग वहां जाते थे। उसके बाद 6 महीने में सीबीएसई का ये आ गया, और जो नया जो स्कूल है, और जिस स्कूल के फर्स्ट प्रिंसिपल प्रोफेसर हब्बू थे, हम लोगों ने ईश्वरम्मा स्कूल से वहां पे मूव किया, मेरे ख्याल से 3 या 6 महीने में,
मुझे 6 महीने के अंदर,
6 महीने के अंदर। और ये स्वामी जैसे करते हैं कि आपने स्वामी को पूरा सरेंडर किया, स्वामी को आपने पूरा त्यागा, कैसे भगवान ने आपकी रक्षा की, फ्यूचर तैयार किया हम सबका। आज हम जो भी हैं, चाहे हम किसी भी पोजीशन पे बैठे हैं, कितनी भी सैलरी कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है कि हम लोग स्वामी के सानिध्य में थे, और जो भी हम हैं आज, विदाउट अ सेकेंड थॉट, सब क्रेडिट्स भगवान को जाता है, हम लोग कुछ भी नहीं है।
नहीं, स्वामी की जो ग्रेस है वो अपरंपार है। आप 3 कंट्रीज के सेल्स ट्रेनिंग हेड करते हैं, और आपका भाई इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है, तो चाहे आप यहां पर आए, तेलुगु मीडियम में आपने ज्वाइन किया, स्वामी को पूरा सरेंडर किया, और अब स्वामी ने आपको देखो कहां से कहां पहुंचा दिया।
सब स्वामी की ग्रेस है,
स्वामी की ग्रेस है। प्रोग्राम के बिल्कुल एंड पे आ रहे हैं, तो हम आपको तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं कि आप आए रेडियो साई में, आपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और मैं आपको अगले साल फिर मिलूंगा 1 जनवरी को।
हम सब स्वामी को थैंक्स करना चाहते हैं।
थैंक यू साई राम, बहुत बहुत धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे हमारा लोकप्रिय कार्यक्रम साई का प्यार जीवन आधार।
आज हमने इस कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा के दो वरिष्ठ विद्यार्थियों श्रीमान अनिंद्या जी दास गुप्ता एवं श्री कपिल जावा जी के मध्य हुआ वार्तालाप सुना, जिसे रेडियो साई के स्टूडियो में जनवरी 2019 को रिकॉर्ड किया गया था।
प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं गान सरिता, जो कि साईं प्रेम वाणी के हिंदी प्रसारण का एक भाग है। हम सभी को भगवान के साक्षात दर्शन के वो अविस्मरणीय पल याद हैं, जब हम भगवान के देह काल में उनके प्रत्यक्ष दर्शन करते थे। भगवान तो आज भी हमारे बीच हैं, लेकिन सभी साईं भक्तों का एक बड़ा मधुर अनुभव ये है कि भगवान से मिलते ही उन्हें यह एहसास हुआ कि भगवान ही वास्तव में हमारे हमराही थे और भगवान ही हमारी मंजिल थे। भगवान ने जीवन के हर क्षण में अपना प्रेम हमें महसूस कराया है, बिना बोले दर्शन मात्र से लाखों की बातों को बताया है और करोड़ों दिलों को श्रद्धा और भक्ति के रास्ते पर पहुंचा दिया है। एक बड़े ही भावनात्मक गीत में इन भावनाओं को व्यक्त किया गया है। सुंदर भावों से भरे इस गीत के बोल हैं, बारिश की बूंदें धरती पर जैसे पड़ते ही मिट्टी महके है जैसे, वैसा ही साईमा तुम्हारा है साथ, महके है जीवन जब हो ये एहसास। आइए इस गीत का आनंद लेते हैं आज की गान सरिता में।
कभी
के भावों ने तो भगवान के दर्शन को एक बार फिर साकार कर दिया है। इस गीत को श्री सत्य साईं सेवा संगठन छत्तीसगढ़ ने प्रकाशित किया है साईं संस्कार गीतमाला भाग दो में, और 5 जनवरी 2019 को इस गीतमाला को स्वामी के श्री चरणों में समर्पित कर प्रसारित किया।
आज का हमारा साई प्रेम वाणी कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमें अपने सुझाव एवं परामर्श ईमेल या व्हाट्सएप पर भेजना न भूलें। हमारा पता है listener@radiosai.org, listener@radiosai.org, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258, और एक बार 9393258258। हिंदी भाषा के ये सारे कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल रेडियो साई हिंदी पे भी सुन सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ध्यान रहे कि रेडियो साई हिंदी एक ही शब्द है, और वहाँ कमेंट बॉक्स में अपने विचार सबसे शेयर करें। इन कार्यक्रमों को अपने मन मुताबिक सुनने और डाउनलोड करने के लिए आप हमारी वेबसाइट radiosai.org/hindi पर भी जा सकते हैं। ये सोच के तोड़ दी तस्बीह हमने कि गिन गिन के क्या नाम लेना उसका जो बेहिसाब देता है। ऐसा असीमित प्रेम बरसाने वाले भगवान के चरणों में हम हमारा तन मन धन अपनी हर श्वास समर्पित करते हुए आप सभी से विदा लेते हैं। जय साई राम।